मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे जो न्यायपालिका का एक कार्यपालिकीय स्वरूप विकसित होता चला जा रहा है और कैसे ये हो रहा है और सरकार ही ऐसा कर रही है, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं और जो दूसरे समाचार हैं उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत ज़्यादा है। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बात कही अस्पतालों के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, कि ये जो हमारे हॉस्पिटल हैं ये बेसिकली रियल इस्टेट इंडस्ट्री होते जा रहे हैं। रियल इस्टेट इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ? रियल इस्टेट क्या है? रियल इस्टेट का मतलब है वो जमीन लेता है और उस पर फिर भवन निर्माण करता है और वो लोगों को बेचता है, आवास की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। और ये माना जाता है कि अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का जो क्षेत्र है उनमें से एक रियल इस्टेट का क्षेत्र है। और आपको आप पाएंगे, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए तो जो खासकर इस तरह का काम कर रहे हैं वो आपको बहुत पैसे वाले लोग मिलेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने अस्पताल की बात कही है। अब इसे आप अस्पताल से कैसे जोड़ेंगे कि अस्पताल बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, मतलब इलाज बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो इलाज महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अस्पताल के लिए जो भवन बनाए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। बहुत आलिशान भवन बनाए जाएंगे, सुविधाएं जुटाई जाएंगी, दी जाएंगी, और सीधी सी बात है कि जब उसमें इतनी बड़ी पूंजी लग गई है केवल भवन बनाने में, तो अब आप उसे वसूल करेंगे क्योंकि वो आपकी लागत है। लागत आप वसूल करेंगे अपने पेशेंट से, तो जो इलाज का खर्च होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और उसका कारण है भवनों का विशाल होते चले जाना। और यही स्थिति फ्रेंड्स एजुकेशन सेक्टर में भी हो रही है। एजुकेशन सेक्टर में भी आप एजुकेशन के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनकी बिल्डिंग्स जा कर के देखिए, वहाँ मिलने वाले स्टूडेंट्स को सुख सुविधाएं देखिए, यहाँ तक कि बाकायदे स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए जो बसें हैं वो तक एयर कंडीशनर होने लगी हैं। तो स्वाभाविक है कि ये सारा पैसा वो पेरेंट्स से वसूल करेंगे। इसका मतलब है कि एजुकेशन और हेल्थ, जिसका पर्पस कहीं न कहीं जीवन को बनाना और जीवन को बचाना होता है, वो सब अब धीरे धीरे उद्योग में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि वे बहुत ज़्यादा महंगे भवनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम खासकर मेडिकल की बात करें तो आप देखिए कि जब से मेडिकल में आप बाकायदे डोनेशन दे करके और एडमिशन ले सकते हैं, कुछ इस तरह की सीट्स रखी गई हैं, ये वैधानिक है, तब से मेडिकल बनने के लिए ही पता लगा कि अगर आप डोनेट करके जाते हैं तो 3-4-5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि भाई आपने लोन लिया है, आपको लोन पटाना है, तो आप उसी तरह से वसूल करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का की जो टिप्पणी है हेल्थ के बारे में, ये बहुत अच्छी टिप्पणी है और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, हो सकता है कहीं आपके काम आ जाए। दोस्तों, कल के टीवी न्यूज़ में भी आपने देखा और आज के अखबारों में भी इसे बहुत अहमियत दी गई है, एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे गए हैं, खासकर साइबर जासूसी को लेकर। इस पर मैं अभी कुछ खास बातें करने नहीं जा रहा हूं। 1-2 साल पहले भी मुझे ध्यान आ रहा है कि इस तरह की घटना घटित हुई थी। इसमें कुछ नाम आपने सुने होंगे, एक नाम सुना आपने, पेगासस। पेगासस क्या है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। ये बेसिकली इसराइल के द्वारा तैयार किया गया एक स्पाईवेयर है, वेयर है। स्पाईवेयर का मतलब आप कह लीजिए कि एक ऐसा यंत्र है जो जासूसी करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आप जो भी है, आपके उस मोबाइल फ़ोन में इसे अटैच कर दिया गया या उसको इससे जोड़ दिया गया, तो आप जिससे जो भी बातें करेंगे या व्हाट्सएप या जो भी आपका सिस्टम है, चैनल है, वो सारी बातें दूसरों को पता लगने लगेंगे। यानी कि जो भी आपकी जासूसी कर रहा है उसको पता लगने लगेंगे। तो एक तरह से फोन टैपिंग मामला जैसा ही ये मामला है। आपने न्यूज़ में इसके बारे में सुना। बेसिकली ये इसराइल की कंपनी है और जो कंपनी है उसका नाम NSO। अगर आप टीवी चैनल देख रहे होंगे तो बीच बीच में डिस्कशन के आसपास वो NSO भी दिखा रहा है। तो NSO बेसिकली इसराइल की कंपनी है जिसने ये पेगासस स्पाईवेयर बनाया है। कहा यह जा रहा है, जिसको लेकर के संसद में हंगामा भी हुआ, कि इसके तहत बहुत से हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ तक कि जो सोशल वर्कर्स हैं, उनकी जासूसी की जा रही है। तो विपक्ष ने सरकार पर एक तरीके से आरोप लगाया कि सरकार कर रही है, सरकार मिली हुई है, और अगर नहीं भी मिली हुई है तो चलिए कैसे कोई दूसरा देश हमारी जासूसी कर सकता है। और डेफिनेटली ये तो हमारी संप्रभुता पर किया गया एक बहुत बड़ा आघात है। भारत सरकार इसे, कोई भी सरकार कह लीजिए, स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। और सच बात यह है कि चूंकि हमारे यहाँ डेटा संरक्षण के कानून अभी उस तरीके से नहीं बन पाए हैं, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं इस तरह की कंपनियाँ उठा लेती हैं। तो इसे आप थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखिए कि ये कैसे डेवलप होता है। फ्रेंड्स, दो छोटी छोटी सूचनाएं आपको देना चाहूँगा समाचार के रूप में। पहला तो ये है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, आपके जनरल स्टडीज़ का जो थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स वाला, उसमें उसके सिलेबस को आप देखेंगे तो उसमें आपूर्ति श्रृंखला शब्द दिया हुआ है, यानी कि जो सप्लाई चेन है वो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ये मतलब ये नहीं कि आप अनुमान लगा रहे हैं, बाकायदे मेंशन्ड है आपूर्ति श्रृंखला। तो आपूर्ति श्रृंखला के तहत ही ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार आएगा। इसे आप अपडेट कर लें। दो पुरस्कारों की घोषणा की गई। पहला तो वो है कि जो लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा, और जो दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा कि उन सेवाओं का जो उद्योग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। थोड़ा सा बस दिमाग में रखें। ठीक इसी तरह की जो अगली सूचना है वो ये है कि ब्लॉकचेन के बारे में आप सुन रहे हैं, तो महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो एजुकेशनल प्रमाण पत्र होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वह जारी करेगा। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। बस इसे थोड़ा सा बस दिमाग में रखें। फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि न्यायपालिका का कार्यपालकीय उपयोग। देखिए, मैं जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उपयोग। देखिए, दो स्तर हैं। पहला तो यह है कि जब हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं तो न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जो जुडिशरी है हमारी वो कुछ अपनी सीमाओं को लांग कर और जो एग्जीक्यूटिव के पावर्स हैं या एग्जीक्यूटिव का जो क्षेत्र है उसमें एंटर कर रही है, यही न्यायिक सक्रियता है कि दुनिया भर सरकार को आदेश दे रही है ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, तो इसे हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। और ये बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं है न्यायिक सक्रियता, एक तरह से निगेटिव रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। बात यह है कि कार्यपालकीय इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सरकार भी एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रखकर अब उसका उपयोग करने लगी है। उदाहरण के तौर पर खासकर कल सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जो केरल है, देखिए केरल ने क्या किया था, अभी बकरीद आने वाली है तो केरल सरकार ने 3 दिन के लिए इस तरह की घोषणा की कि भाई बकरीद का उत्सव है, त्यौहार है, आप जो भी कह लीजिए, तो उसमें जो था कि इतने लोग इकट्ठे हो सकेंगे, किसी प्रोग्राम में 50 लोग आ सकेंगे, तो उसमें उन्होंने छूट दे दी क्योंकि बकरीद एक इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, त्यौहार है, तो ठीक है वो लोग इकट्ठे हो सकेंगे। लोक जनहित याचिका आप जानते हैं कि चलेगी, यहाँ तक कि कोर्ट स्वयं संज्ञान भी ले सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये क्या हो रहा है, आप कैसे ऐसे अवसर पर इसकी अनुमति दे सकते हैं, तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। 1 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जब यही किया था, जब कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। आपके सामने उदाहरण मौजूद है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सच में सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह की बातों से अनजान हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए, जरूरी थोड़ी है कि कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, जनहित याचिका ही दायर करे तभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, उसको अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में कदम उठाना पड़ा। कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबसे चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें अब ये देखना होगा कि जो कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है उसमें हम कहाँ तक एंटर करें, क्योंकि न्यायालय आदेश दे देते हैं, कार्यपालिका के लिए उसको कर पाना मुश्किल होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आदेश हैं और जो सलाह है जो मशविरा है, जो उपाय है, उनमें कहाँ अंतर है। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने इस पर बात की थी। तो ये सब होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, यही है न्यायपालिका का कार्यपालकीय उपयोग। इसी बारीकी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि डेमोक्रेसी में सरकार चुनकर आती है, उसका अपना वोट बैंक होता है। तो अपने वोट बैंक को नाराज करना वो नहीं चाहती। तो अब कैसे किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? तो उसके लिए एक अच्छा तरीका यही है कि अपनी तरफ से तो कह दो। जैसे मान लीजिए केरल में कह दिया गया कि ठीक है, आप इकट्ठे हो जाइए, कांवड़ वालों को कह दिया गया कि आप यात्रा कीजिए। आप देखिए, आरक्षण के मामले में हमेशा यही होता है कि राज्य विधानसभाएं पारित करती हैं कि आरक्षण हम इसको इतने प्रतिशत देंगे, इसको इतने प्रतिशत देंगे। इसके बाद फिर कोई कोर्ट चला जाता है और हायर कोर्ट, और हायर कोर्ट कह देती है कि 50% से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा हर राज्यों में, और ज़्यादातर राज्यों में हो रहा है, हर समय ये हो रहा है। तो याद रखिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो एग्जीक्यूटिव है, वो जानती है कि ये चीज़ सस्टेन करने वाली नहीं है, फिर भी वो ऐसा करती है। ऐसा क्यों करते है? यही पॉलिटी है। क्योंकि देखिए, ऐसी स्थिति में सीधे सीधे वो लोगों से कह देती है कि भाई, हम तो चाह रहे थे कि कांवड़ यात्रा हो जाए, हम तो चाह रहे थे कि बकरीद इस तरीके से मन जाए, हम तो चाह रहे थे कि आपको आरक्षण मिल जाए, और हमने दे भी दिया। लेकिन अगर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट हमें कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो देखिए, कोर्ट की अवमानना तो नहीं की जा सकती। तो अब हम क्या करें? और कोर्ट को ऐसा करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो एक छोटी सी बात मैंने कही है, वो केवल इसलिए बताई है कि जो न्यायिक सक्रियता है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर मेंस में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। 2 साल में एक बार तो किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पर प्रश्न आ ही जाता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तथ्य को भी शामिल करना चाहिए कि कोर्ट किस तरीके से केवल सक्रियता दिखा करके ही कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार स्वयं न्यायपालिका को इस तरह के हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करती है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं सोनल सरताबे और अनामिका विमल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। फ्रेंड्स, कल गजेटेड हॉलीडे है, परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।